हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रिदांश, गुस्से से अपने कानों पर हाथ रखते हुए, जस्ट शट अप, नहीं हूँ मैं गलत, नहीं हूँ, नहीं किया मैंने कुछ भी गलत, कभी नहीं पछताऊंगा मैं, वो सिर्फ मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रही है, नहीं हूँ मैं गलत। फुल एसी में भी उस वक्त रिदांश का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, उसकी आंखें पूरी लाल हो रही थीं और उसका सर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रेशर से अभी फट जाएगा। रिदांश जल्दी से अपनी टेबल की दराज से एक टैबलेट का पाउच निकाला और उसमें से एक टैबलेट जल्दी से अपने मुंह में रखकर टेबल पर रखे पानी के ग्लास से पानी पीकर टैबलेट निगल गया। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सर कुर्सी से टिका लिया। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर सामान्य जैसे भाव उभर आए थे। कुछ देर बाद रिदांश अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो उसे अपनी माँ के कमरे से कुछ शोर की आवाज़ आई। वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि खाने की थाली जमीन पर बिखरी हुई थी और उसकी माँ गुस्से से नई कैटेकर को घूर रही थी। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, रिदांश बीच में आ गया और उस केयरटेकर को वहां से जाने के लिए कहा। वो केयरटेकर जल्दी से वहां से बाहर चली गई। रिदांश आराम से अपनी माँ को बेड पर बिठाते हुए, क्या हुआ है माँ, आपने इतना गुस्सा क्यों किया, वो तो आपकी मदद करने आई थी ना। बस कल्पना जी बच्चों की तरह शिकायत करते हुए, वो नहीं पसंद मुझे, मुझे अरु चाहिए, वो बहुत अच्छी है, उसने मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाया, उसने मेरे और मेरी डॉली के सुंदर से बाल भी बनाए, मुझे सिर्फ वही चाहिए। रिदांश, अच्छा आज मैं खुद आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। कल्पना जी जिद करते हुए, नहीं मुझे अरु ही चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। रिदांश जानता था कि उसकी माँ जिद पकड़ चुकी है और वो अब किसी की नहीं सुनेगी। अगर रिदांश ने उनकी बात नहीं मानी तो वो हर बार की तरह हाइपर हो जाएंगी और फिर उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रिदांश ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली और आर्ना को लेने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आर्ना भूख की कमजोरी की वजह से बहुत लो फील कर रही थी और जिसकी वजह से उसका सर भी बहुत दुख रहा था। वो अपना सर पकड़े हुए सोफे पर बैठी थी कि उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाकर देखा जिसमें फिर उसी अनजान शख्स का मैसेज था। मैसेज बिना पढ़े आर्ना गुस्से से अपना फोन ऑफ करके साइड में रख दिया। तभी कमरे में रिदांश आया। चलो मेरे साथ, माँ ने तुमसे मिलने की जिद पकड़ी है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तो अब तुम ही इसे संभालोगी भी। रिदांश को लगा था कि जो कुछ भी उसने आर्ना के साथ किया उसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए मना करेगी, लेकिन आर्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो बिना कुछ बोले रिदांश के साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। इसे देखकर एक मिलीसेकंड के लिए रिदांश के चेहरे पर हैरानी के भाव आए, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने चेहरे के भावों को हमेशा की तरह सख्त और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बदल लिया। कुछ पल बाद ही दोनों कल्पना जी के कमरे में गए। एक पल बाद ही समांथा खाने की ट्रॉली लेकर कमरे में आई और खाना टेबल पर लगाकर वहां से फौरन चली गई। आर्ना कल्पना जी की थाली सजाकर उन्हें अपने हाथ से एक छोटे बच्चे की तरह निवाला दे रही थी। कल्पना जी तो तुम नहीं खाओगी? आर्ना निवाला कल्पना जी की तरफ बढ़ाते हुए, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। कल्पना जी अरु की बात सुनकर किसी बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देती हैं। आर्ना उन्हें बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी और रिदांश वहीं खड़ा गहराई से कुछ सोचता हुआ उसे नोटिस कर रहा था। आर्ना को अब बहुत ज्यादा कमजोरी सी महसूस हो रही थी और उससे यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके कल्पना जी को खाना खिलाने के बाद उसने उनका मुंह पोछा, उन्हें दवाई दी और फिर उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटाकर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। लेकिन अब उसके लिए यहाँ और रुकना मुश्किल हो रहा था और वो रिदांश के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो बोझिल कदमों और आंखों से कमरे से बाहर निकल आई। रिदांश को आर्ना का यूं अचानक कमरे से चले जाना थोड़ा फिशी भी लगा, लेकिन दवाई के नशे से आधी नींद में जा चुकी अपनी माँ को सुलाने के लिए वो वहीं कमरे में रुक गया था। कमरे से बाहर आकर आर्णव कुछ पल तक यूं ही दीवार के सहारे खड़ी हो गई। कुछ पल बाद जैसे ही उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए, उसकी आंखें कमजोरी से तेजी से धुंधलाना शुरू हो गईं और उसका सर जोर से घूमने लगा। अगले ही पल उसके कदम पूरी तरह डगमगा गए और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन तभी ऐन मौके पर कमरे से बाहर आता रिदांश उसे गिरता देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इसी के साथ आर्णव पूरी तरह अंधेरे के आगोश में चली गई। रिदांश के हाथ जब आर्णव के जिस्म को छुए तो उसे महसूस हुआ कि उस वक्त आर्णव का जिस्म कितनी तेज बुखार से जल रहा था और जिसका एहसास भी उसने किसी को नहीं होने दिया था। रिदांश कुछ सोचते हुए आर्णव की बंद आंखों और चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह ही ब्लैंक थे। कुछ पल सोचने के बाद आखिर में रिदांश एक पल को अपनी आंखें बंद करता है और अगली ही पल वो आर्णव को अपनी बाहों में उठाकर वहां से आगे बढ़ जाता है।